आयत पे चलते हैं। आप देखेंगे कि इन आयत को पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि ये एक अलग वाक्य है। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, वही अंदाज है जो पिछली आयत के शुरू में था, यानी गौर से देखो, सोचो। किधर नहीं देखा? इलल मलई, सरदारों की तरफ। किधर थे वो सरदार? मिम बनी इसराइला, बनी इसराइल के। किस दौर की बात है? मिम बादी मूसा, मूसा अलैहि सलाम के बाद। कितने बाद? तकरीबन 300 साल बाद। क्या हुआ? इस कालुली नबीजिन, जब उन्होंने कहा अपने नबी से। क्या नाम था नबी का? हजरत स्मोइल या हजरत शमोन। क्या कहा? इब असलना मलिकन, मुकरर कीजिए हमारे लिए एक बादशाह। क्यों कहा? क्योंकि उनके ख्याल में नबी बूढ़े हो चुके थे और अब उनको एक नौजवान की आदत चाहिए थी, और वेस्टर्न स्टाइल ऑफ रूलिंग जो थी उससे इम्प्रेस थे। क्या होगा अगर आप एक शख्स को बादशाह बना देते हैं? उसकी वजह क्या बताई उन्होंने? नुकातिल फी सबीलिल्लाह, ताकि हम लड़ें अल्लाह के रास्ते में। क्या मतलब? कि जब उन्होंने अपने नबी से कहा कि आप एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम लड़ें अल्लाह की राह में, हालांकि जिनको लड़ना होता है वो तो नबी की क़यादत में भी लड़ सकते थे, लेकिन सिर्फ ये उनका उज़र था अपने आप को दूर करने का। फिर क्या हुआ? कौला, फरमाया। किसने? साथ ही लिख लीजिए, इस आयत पे लिखेंगे तो फिर समझ आएगी, वरना कुछ समझ नहीं आएगी। नबी ने कहा, हल असई तुम इन कुतिबा अलैकुमुल किताल, कहीं ऐसी बात ना हो कि तुम पर जिहाद फर्ज किया जाए और अल्लाह तो कातिलू, तुम ना लड़ो, तुम लड़ने से इनकार कर दो। नबी ने कहा कि अच्छा, आज तो बड़े मुतालबे कर रहे हो कि अब कोई एक ऐसा रूलर हमारे सर पे मुसल्लत किया जाए जो हमें जिहाद के लिए तैयार करे, लेकिन कल अगर ऐसा हो जाए, फर्ज कर दिया जाए, तो फिर तुम जिहाद का इनकार करो। सवाल पैदा होता है कि नबी ने ये बात क्यों कही? तो तजुर्बा बता रहा था कि कौमों ने जब भी बड़े बड़े मुतालबे किए और जिहाद की बातें की, लेकिन जब अमली तौर पे ऐसा हो गया तो वो पीछे हो गए। खैर, नबी ने ये कहा कि तुम नहीं लड़ोगे, उनको आर दिलाई, जोश दिलाया। तो कालू, वो बोले। कौन बोले? लिखिए, कौम बोली। वमा लना अल्ला नुकातिल फी सबीलिल्लाह, भला ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह की राह में जिहाद ना करें। यहाँ पे इस जुमले को हाईलाइट भी कर लें, इंशाल्लाह आगे जाके आपको इस पे एक बात समझ आएगी। बज़ाहर उन्होंने क्या फीलिंग्स दी हैं नबी को कि हम अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, यानी फॉर द रिलीजियस कॉज। बज़ाहर स्लोगन भी यही है, उनका ख्याल भी यही है कि हम अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे हैं, लेकिन असल मेन थीम उनका अंदर छुपा हुआ कुछ और था। वो क्या था? वक़द उखरिजना मिन दियारिना व अबनाइना, हालांकि हमें घरों से निकाल कर बाल बच्चों से दूर कर दिया गया। यहाँ देखिए, बज़ाहर दीन का नाम ले रहे हैं लड़ने के लिए, लेकिन असल मोटिव बच्चों और घरों की मोहब्बत थी। ये है वो कॉल और फेल का तज़ाद कौमों के, जिसके ऊपर अल्लाह की मदद उठ जाती है। याद रखिए, अभी आपको हदीस मैंने कोट की थी शुरू में, कि वही जिहाद अल्लाह के रास्ते में जिहाद तसव्वुर होगा जो सिर्फ और सिर्फ हियल कलिमतुल्लाहिल उल्या, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने वाला है। इनको अपने माल से मोहब्बत थी, हाय हमारा माल ले गए दुश्मन, हमारे बच्चे ले गए, तो अल्लाह को इस तरह का शिर्क पसंद नहीं। खैर, इसको एक साइड पे करके आगे क्या हुआ? अब यहाँ आयत में नहीं लिख रहा, लेकिन हमें पता चल रहा है कि नबी ने उनके लिए ऐसा कर दिया कि ठीक है, कोई एक ऐसी लीडरशिप इनको मिल जाए जिसके साथ मिलकर ये जिहाद फर्ज करें। जब तक हालात पूरे साजगार नहीं होते, कौमों की उतनी पकड़ नहीं होती, लेकिन उनके मुतालबे पे एक लीडर मिल गया, सब कुछ हो गया, रिसोर्सेज जमा हो गए, लेकिन हुआ क्या? फलम मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, फिर जब लाजिम कर दिया गया उन पर लड़ना, यानी उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया, तो तवल्लौ इल्ला क़लीलम मिन्हुम, तो सब पीठ मोड़ के भाग गए सिवाय चंद एक के। यानी बड़ी बड़ी बातें करने वाले अमल के मैदान में पीठ फेर के भाग गए, चंद लोग बाकी रह गए। कोई बात नहीं, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला सब जानने वाला है जालिमों को। अब आप देखिए, इस आयत के बाद अगली आयत भी आ रही है, लेकिन अगर हम इतनी सी बात पे बात कर लें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 300 साल बाद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1000 साल पहले, ठीक है, ये वाक्या पेश आया। फ़लस्तीन छिन चुका था, बनी इसराइल पे कौमे मालका कब्ज़ा कर चुकी थी, इनकी सारी कीमती चीज़ें उनके कब्ज़े में आ चुकी थी, और उन लोगों के अंदर अब बिल्कुल जिहाद की जो रूह थी वो ख़त्म हो चुकी थी। नबी शिमोइल थे, और ये वो दौर था कि नबी हुक्मरान भी होते थे और नबूवत का काम भी करते थे। यानी आप कह लें कि ये वो दौर है, जैसे आपको पीछे हिस्ट्री पढ़ाते हुए बताया था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से ये सिलसिला शुरू हो गया था कि नबूवत और बादशाहत एक ख़ानदान में आ गई थी। तो तकरीबन ये उसी के कुर्ब व जवार का दौर था। लोगों ने हज़रत शमून से ये मुतालबा किया कि हमें अब आपकी जगह कोई और चाहिए। आमतौर पे क्या होता है ऐसे मुतालबों पे? गुस्सा, अच्छा जी मेरी ज़िंदगी में तो ये कुर्सी कोई नहीं छोड़ेगा। 40 40 साल से लोग एक ही जगह पे जमे बैठे होते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम चूँकि प्रेसिडेंट थे, हम नहीं अपनी ज़िंदगी में तो नहीं छोड़ेंगे ये कुर्सी। हम चूँकि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, हम यहाँ के मुशीर हैं, वज़ीर हैं, फलाँ एंड फलाँ। नबी ने ऐसी कोई बात नहीं की। इससे क्या पता चलता है कि जब किसी के दिल में अल्लाह के दीन को प्रमोट करने का जज्बा होता है ना, तो वो अपनी ज़ात से बेनियाज होता है। वो कहता है अगर जूते सीधे करके भी दीन की कॉज में मेरा हिस्सा डल रहा है तो मैं वही क्यों ना कर लूँ, वो तो ज़्यादा केयरफुल चीज़ है, और अगर मुझे बाथरूम भी धोने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दीन की जगहों के बाथरूम साफ़ होंगे तो दीन अच्छा लगेगा। और अगर उसको कोई कहता है कि नहीं आप हमें पढ़ा दें तो वो पढ़ा भी लेता है। सारे एक ही कॉज में लगे हुए हैं तो कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। लेकिन जब सेल्फ प्रोजेक्शन और अपनी ज़ात की नुमाइश ज़्यादा सामने होती है तो लोग ऐसी बातों पे अमूमन गुस्सा खाते हैं। तो नबी की आपको बात से बिल्कुल लग रहा है कि नो रिस्पॉन्स, इट्स ओके, ठीक है, ये वुसअत कल्बी की बात है कि उन्होंने इनकी बात को देखा और मान के चल पड़े। अब इनका ये कहना कि हम तो अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे, लेकिन असल में उन्होंने ज़मीन के हासिल करने और अपने घर बार और औलादों और दौलत के लिए की थी, क्या ये जायज़ है? ये जायज़ नहीं है। देखिए कि अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को रिलेट करके देख सके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपने जितनी पढ़ी है या आगे जाके पढ़ेंगे, 1 महीना हद है किसी भी जंग के अख्तिताम पे पहुंचने की, यार या पार, या हन्ने या बन्ने। और अल्हम्दुलिल्लाह 98% जंगे नबी सल्लम ने जीती ही थी। वजह क्या थी कि सहाबा कराम और नबी सल्लम का कॉज एक ही था, फी सबीलिल्लाह। लेकिन आज के दौर में बस दफ़ा आप ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े की खातिर पिछले 60 से ज़्यादा साल से लड़ रहे हैं, राइट? अंदाज़ा है ना आपको क्यों फैसला नहीं हो रहा? ये वजह, जिस दिन मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम पे लड़ता है ना, अल्लाह की मदद ऐसे लगता है कि हरकत में आ जाती है। लेकिन जब वहाँ शिर्क के गढ़ भी बन जाए, वहाँ इंसान को अपनी लैंड्स, अपनी जगह, अपनी सदारत, अपनी वजारत, अल्लाह कहते खुद ही लड़ लो, मैं तो मदद नहीं करता। यही असूल अल्लाह का दीन के काम में है, याद रखिए। मैं तो कहती हूँ कि ये वाक़यात जो हम जिहाद के पढ़ते हैं, हम औरतें सिर्फ अपने पढ़ने पढ़ाने और दीन पे इसको रिलेट कर लें तो हमारे लिए बहुत प्यारी गाइडलाइन है। जब तक ये दीन का काम हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करेंगे, इसमें बरकत है, इसमें अल्लाह की मदद है। नामुमकिनात मुमकिनात में बदल जाएंगी, बदलती हैं, इंशाल्लाह आपके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन जहाँ हमारी नीयत कुछ है, अल्लाह का काम ऑफ कोर्स, ठीक है, 98% अल्लाह का काम है, चलिए 2% को मेरा भी फ़ायदा हो जाए इधर आने में, 2% ज़रा मुझे भी कुछ सेल्फ प्रोजेक्शन मिल जाए, ज़रा 2% ज़रा मुझे भी कोई माली फ़ायदा हो जाए, तो आप सोचें कि अल्लाह की मदद चली जाएगी। अल्लाह अपनी मदद कर दे और बात है, आप बगैर किसी मकसद और कॉज के दीन का काम करेंगे, अल्लाह आपको इज्जत भी दे देगा, मोहब्बत भी दे देगा, शोहरत भी दे देगा, आपको माल भी मिल जाएगा। लेकिन अगर नीयत में ये चीज़ आ जाएगी ना, तो बस वहाँ से आप समझिए कि अल्लाह ताला की मदद उठ जाती है। इतना आसान है अल्लाह की मदद लेना, लेकिन शैतान इसी पे आके हमला कर देता है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दिस एंड दैट नहीं कर सकते। मसलन आप तो अभी स्टूडेंट्स हैं ना, आप इस पे अपने ऊपर कैसे परखें? आप इस कोर्स को क्यों करें? ताकि अल्लाह के कलमे को बुलंद करना है। वो कैसे होगा? पहले तो आपकी ज़ात पे होगा। मैं पढ़ूंगी, मुझे रब की मर्जी समझ आएगी, मुझे अपनी खामी और खूबियों का पता चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं अल्लाह का कुर्ब पा जाऊंगी, मैं अपनी ज़ात में से चुन चुन के एक एक बुराई निकाल दूंगी। फिर होते होते जब मैं पढ़ती जाऊंगी, मेरे घर का माहौल थोड़ा बदलेगा, फिर मेरा ये कोर्स पूरा होगा, फिर मैं इसमें कुछ और ट्रेनिंग लूंगी, फिर मैं दूसरों की मदद करूंगी। 100% जिहाद फी सबीलिल्लाह। एक मुजाहिद कौन होता है कि जिसको धुन सवार हो, हर वक्त वो अल्लाह के दीन को सर बुलंद करना चाहता है। अब एक वो बंदा है कि जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के जरिए ये करना चाहता है, और दूसरा वो बंदा है कि जो ये काम सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए करना चाहता है। तो आप याद रख सकते हैं कि आज क्या अल्लाह मुसलमानों का नहीं है? आपको लगता है कि इतनी मुसलमानों के ऊपर जो मुश्किलात हैं दुनिया में, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आज फी सबील अल्लाह के साथ साथ कुछ और भी रास्ते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ ये वाकया बयान कर दिया। फिर इसमें एक और छोटी सी बात आप देखिए कि बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनको अपनी गलती खुद पता होती है। बनी इसराइल इस वक्त तक जिहाद की रूह से बिल्कुल खाली हो चुके थे, लेकिन उन्होंने वजह क्या बनाया? अच्छा, लीडर ही नहीं है, कोई है ही नहीं जो हमें ऑर्गेनाइज करे, जो हमें बताए हम कैसे जिहाद करें। नबियों की नस्ल से थे मूसा, इनको कहते कहते दुनिया से चले गए। यूशे बिन नून, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, सारों ने इनको कुछ बताया, लेकिन जिनको काम नहीं करना होता ना, तो वो सारा उजर दूसरे पे। जैसे हम कभी हर बात का उजर शोहर पे डाल देते हैं, बच्चों पे डाल देते हैं, मेहमान आ गए थे, फलां हो गया था घर में। एक तो होते हैं रेगुलर मसाइल, वो तो जिंदगी का हिस्सा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर एक बंदा अपने काम ना करने को ये बता दे, तो फिर समझ लीजिए कि वो अपने आप को इसी कैटेगरी में रखते हैं। फिर अगली आखिरी बात करके आगे चलते हैं कि ये कौन सा दौर था। मुसलमान मक्का से अपने घर बार छोड़ के आ चुके थे। अब यहाँ बड़ा गहरा नुकता है जो यहाँ कहा गया कि कद उखरिच ना, हम निकाले गए अपने घरों और बच्चों से। तो मक्का से मदीना हिजरत करके आने वालों को भी कहा जा रहा है कि अपना किबला ठीक रखना। अगर तुमने मदीना में आकर कुफार से इस वजह से जंग करनी है ना कि हाय इन्होंने मक्का में हमारे घरों पे कब्जा कर लिया है और हमारे खानदानों को रोक लिया है, तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आएगी। बड़ी बारीक सी लाइन है। अल्लाह एक कतरे बराबर इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करता जिसको आपके 110% सबमिशन, जैसे हम चाहते हैं। हमें भी तो लोगों से ऐसी ही मोहब्बत चाहिए होती है ना, तवज्जो शौहर की हो या बच्चों की हो या बीवी की। हम कहते हैं 100%, 100%, और हालांकि हमने उनको क्या दिया है या वो हमें क्या देंगे। तो अल्लाह की ज़ात तो इसका हक रखती है कि जब कोई काम हम उसके रास्ते में करें, तो फिर हमारी नीयतें बिल्कुल दुरुस्त हों। और आप कह लें कि नीयत का दुरुस्त होना अल्लाह की मदद को बुलाने का एक नुक्ता आगाज होता है। नबी इस पे बहुत कुछ कह सकते थे, बहुत सारी बातें कर सकते थे, दिस एंड दैट, लेकिन नबी ने कहा नहीं, तुम्हें चाहिए, कम ऑन, आई विल हेल्प यू। कैसे? अब क्या हुआ? अगले हिस्से पे जाके देखेंगे कि नबी ने उनकी इस बात के ऊपर कह दिया कि नो प्रॉब्लम। वकाल लहुम नबीयुहुम, और बेशक उनसे कहा उनके नबी ने, यानी क्या कहा था कि एक लीडर दो। तो नबी ने कहा इन अल्लाह कद बासलकुम तालूत मलिकन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया। अब ये अल्लाह ने कैसे किया? नबी को वही के जरिए बताया ना, ठीक है, तालूत को बादशाह बना दिया। तालूत कौन थे? कहते हैं कि बनी इसराइल के बिल्कुल एक आम शख्स थे, ना दौलतमंद थे, ना सियासी घराने से ताल्लुक रखते थे, ना उनके पास से बाकी सारे मामला थे, बिल्कुल एक ऑर्डनरी शख्स था। अब जब बनी इसराइल ने ये सुना कि अरे तालूत को मलिक बना दिया है, तो कालू अन्ना यकून लहुल मुल्क अलैना, ये कैसे हो गया, उसको हमारे ऊपर हुकूमत करने का इख्तियार कैसे आ गया, वह नहनु हक्कु, हम तो इसका ज्यादा हक रखते हैं कि हमें बादशाहत मिले। यहाँ फिर देखिए इनका एक चोर पकड़ा गया। नबी को जो उन्होंने कहा था ना कि एक बादशाह मुकर्रर कर दें, तो वो असल में बादशाह नहीं चाह रहे थे, बादशाहत चाह रहे थे। उनका ख्याल था कि हम में से किसी को, हमारे मनपसंद किसी लीडर को बादशाह बना दिया जाएगा। लेकिन जब नबी ने एक बिल्कुल गरीब आम सीधे साधे शख्स को चुन लिया, कहने लगे वह नहनु हक्कु बिल मुल्की मिन्हु, हम उससे ज्यादा हुकूमत के हकदार हैं, भाई उसमें क्या कमी है, कोई पूछ सकता है ना। तो अब कमी क्या बता रहे, वलम यूत सातम मिनल माल, देखो देखो इसके पास तो मालो दौलत की वसत ही नहीं है। बात समझ रहे? ये होता है कुछ लोगों के दिल का चोर। कुछ लोग बड़ी बड़बड़ के बातें करते हैं, हमारा ख्याल है कि ये कर दिया जाए, हमारा ख्याल है कि ऐसा मामला हो जाए, दिस एंड दैट। असल में दिल में क्या होता है कि हमें चुन लिया जाए। फिर कादनी लोग ये चाहते हैं, लोगों को ये बात पसंद है, वो आपको पसंद होती है। लोगों की बातें करके जब कोई आपको मैसेज देना था, आप समझ जाएं कि अगर तो इसको ही ये बात ना पसंद होती है तो इसने लोगों को वहीं चुप करा देना था। तो ये इंसानों के अंदर कमी होती है। और याद रखिए कि बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ते हुए हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि इस कौम के जवाल की एक बुनियादी वजह हर दौर में रही, खुद पसंदी, सेल्फ प्रोजेक्शन, आई मी माई सेल्फ, अना आई एम, ईगो, अपनी जात में खोया हुआ बंदा कभी किसी के साथ जुड़ के काम नहीं करेगा। ये लिख ले, क्योंकि उसको उसको लीडर बनना होता है, लेकिन उसको मामूर बनना पड़ता है, यानी वो अमीर बनना चाहता है, आप उसको मामूर बना देते हैं, वो सुनाने आया है, आप उसको सुनने पे मजबूर कर रहे हैं। तो इस बात ने खोल के रख दिया कि इनकी खराबी क्या थी, कि ये दौलत को बुनियाद बनाते थे। अच्छा, इससे मिलती जुलती बात नबी सल्लम से मक्का वालों ने भी कही थी, आप पढ़ेंगे आगे जाके इंशाल्लाह ताला, कि वो कहते थे कि अगर नबी बनना ही था तो ये गरीब यतीम क्यों बन गया। कोई दो शहरों में से कोई बड़ा शख्स, यानी ताइफ और मक्का के बड़े बड़े लीडरों में से कोई वलीद बिन मुगीरा या कोई और इस तरह का शख्स, वो नबी बनता। तो यहां भी थोड़ी सी हम बात करके देख लेते हैं कि लोग दौलत के नशे में और जिस्मानी जाहो जलाल और जाहरदारी के ऊपर इस तरह से खो जाते हैं कि फिर बाज़ दफ़ा उनका ख्याल होता है कि यही चीज़ें जो हैं कामयाबी की दलील है। मिसाल देती हूँ सिर्फ समझाने के लिए, इन आयतों को आप समझ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आज का जो सियासी निज़ाम है, मिसाल देती हूँ आपको कि आज किसी भी दुनिया के मुल्क में, लेकिन हम अपनी मिसाल ले लेते हैं, पाकिस्तान में किसी को हुकूमत में आना है उसकी वजह क्या है, क्या शौक है, होगी किसी हुक्मरान पे हम कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन आप बताइए मुझे कि आज अगर कोई हुकूमत में आना चाहते तो क्या उसको लोगों का शौक है, खिदमत का? और जो तरीकेकार आज हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि सियासत में आने से पहले करोड़ों लगाना पड़ता है, जो एक कंपेन के दौरान खर्च करता है, आप बताइए कि आपके मेरे जैसे आम सफेद पोश लोग तस्वुर भी कर सकते हैं, चाहे दिल में कितना मर्जी जज्बा हो हमारे लोगों की और दीन की और मुल्क की खिदमत का, हमें आगे आने किसने देना है? बड़ी बड़ी तो इंटेलिजेंसीज बैठी हुई हैं और बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो पीछे से इलेक्ट करती हैं, ये गरीब लोग तो सिर्फ वोट डालते हैं ना, फैसले तो पीछे से कहीं और से होके आते हैं। तो याद रखिए कि यहाँ भी ये दौलत का खेल बना हुआ है। जब भी वो कहते हैं ना कि जुदा हो सियासत से दीन तो रह जाती है चंगेजी, कुछ इसी तरह के हालात हमें यहाँ भी इनके दिखते हैं कि ये पैसे की पावर पे अपने मनपसंद लोगों को आगे लाना चाहते थे, और उनका ख्याल क्या था कि इस तरीके से फिर हम लोग ही आगे आएंगे, जिसको उर्दू में एक और जुमले से भी आप तो कह सकते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब उनकी सोच कुछ और थी, नुक्ता नजर कुछ और था, लेकिन आइए जरा देखिए कि नबी की सोच कैसी है, और यहाँ से आपको पता चलता है कि जब किसी मुल्क को मजहबी क्यादत मिलती है तो फिर क्राइटेरियन बिल्कुल बदल जाता है। क्या कहा? काला, फरमाया। किसने फरमाया? नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफाहु अलैकुम, बेशक अल्लाह ने उसको मुंतखब किया तुम पर, यानी ये अल्लाह का फैसला है, वजादहु बस्ततम फिल इल्मी वल जिस्म, और इसको दिमागी और जिस्मानी सलाहियतें फरावानी से बख्शी है। दो बातें समझिएगा इस एक जुमले में, पहली बात ये है कि अल्लाह जिसको चुनना चाहे चुन लेता है। देखिए, दुनियावी कामों के करने के लिए आपकी काबिलियत चुनी जाती है ना, यानी लाइक अगर आपको किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को हायर करना है तो आप देखेंगे कि सारी एप्लीकेशंस में से सबसे अच्छी एप्लीकेशन कौन सी है, किसने यहाँ पढ़ा, किसने बाहर पढ़ा, किसके पास कितनी डिग्री है, ऐसे ही होता है ना नॉर्मली। एक जगह चार एप्लीकेशंस, वो बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन को चुन लेंगे। अल्लाह सुबहाना तआला का इंतखाब क्वालिफिकेशन पे नहीं है, ये तो बड़ा बड़ा लिख ले। मैं और आप कितने गुण क्यों ना अपने अंदर रखें, कितनी आपकी जुबान खूबसूरत, आपकी तजवीद अच्छी, आपकी ग्रामर फरफर, आपको हदीस पे अबूर, फिक पे अबूर, इन अल्लाह अस्तफाहु अलैकुम, जिसको अल्लाह चुनता है वही चुनता है। अल्लाह किसको चुनता है? तड़प को चुनता है। अल्लाह के पास जो क्राइटेरियन है ना, वो आपका दिल है। इल्ला मनत अल्लाह भी कल्बिन सलीम। बस लोगों को इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हेमरेजिया, कि सास से कमतरी की बजाय सास से बदतरी होता है। खूबी तो मेरे में ज्यादा थी, अब उसको बहुत कर दिया। मुझे तो हमेशा लेट डाउन करते हैं, मुझे तो जानबूझ के कोई इग्नोर करता है। जिसके भी दिल में ये आए ना, वो समझे कि वो ना का शिकार है। आगे पढ़ेंगे, एक आयत आती है कुरान में कि अल्लाह खूब जानता है कि उसको अपनी रिसालत कहाँ लेके जानी है, किससे अपना पैगाम दिलवाना है। दूसरी बात इसमें आप देखिए कि ज्यादा हो बस्ततम फैल इल्मी वल जिस्म। मैं कहती हूँ इसको तो आप रट लें। अल्लाह के काम करने वालों में ये तो लाजमी खूबियां हैं। मतलूब खूबियां क्या हैं कि जिस्मानी तौर पे गुड हेल्थ तो है ही है, यानी एक पहली चीज़ है इल्म, अल्लाह इल्म की बुनियाद पे चुनेगा। और दूसरा जिस्म, जिस्म के अंदर आता है फिजिकल आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज कितनी है, और इल्म के साथ आपका बातिन आता है। यहाँ जो तालूत की बात आई है, कहते हैं कि ये कबीला बिन जामीन से था। बाइबल में इसका नाम स्मॉइल है, अगर आपने कभी पढ़ा हो। 30 साल के थे, इंतहाई खूबसूरत, लंबे चौड़े जिस्म के कदावर। इनको चुनने के अंदर जो चीज़ हमें दिखी कि आज अगर हम देखें कि मुसलमान लीडर कैसे होने चाहिए, रिलीजियस या गवर्नमेंट के, दोनों सेम बात है, क्योंकि इस्लाम में रिलीजन और सियासत बिल्कुल एक साथ चलती है। पहली बात यह है कि आपके अंदर इल्म हो, अल इल्म हो, और आप फिर कहेंगे अच्छा किताबें रट रहे हैं, ठीक है। आप ये जो कुरान पढ़ने बैठे हैं, ये असल में नुक्ता आगाज है, इंतहा तो इसकी बहुत आगे जाके होनी है। लेकिन अल इल्म से मुराद खशियत, अल्लाह से ताल्लुक, आपके अंदर पूरी काबिलियत हो, चार लोगों में आप बात कर सकें, आपके अंदर इल्म ऐसा हो कि दलील दे सके, जवाब कोई पूछे तो आप उसको ढीले ढाले हो जाए। आज कितने ही लोग हैं जो दीन पढ़ते पढ़ाते हैं, और यकीन करें सिर्फ कन्फ्यूजन पे बात खत्म होती है, क्योंकि पूरी बात उनको भी नहीं पता होती। कोई सुन के बता दी, अब दूसरे ने दूसरा सवाल कर दिया, कन्फ्यूजन। कौन बंदा आपको बताइए कि वो बात कंफर्म और बिल्कुल ऐसे बता सकता है जिसको आप एक पैराए में के जिसके अंदर वो बात रची बसी है, राइट? मिसाल है कि मैं आपको पढ़ा रही ना, मेरे पास 4-6 नोट्स खुले हों, एक मैंने एक उस्ताद से पढ़ लिए, दूसरे उससे, तीसरे से। अब हो सकता है 2 कन्फ्यूजन्स हो सके। मैं खुद अपनी, अभी चंद दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, माशाल्लाह बहुत बड़ी आलिम है, उन्होंने पूरे यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो वो कहीं क्लास लेती हैं, तो फिर मैंने उनसे पूछा कैसे करती हैं ना, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं क्या करती थी, 2-3 तफसीरें खोल लेती थी सामने, पहले एक में से कुछ बता दिया आप दूसरे में। लेकिन कहती बाद होता क्या था कि मैंने तो एक तफसीर को बताया ना, अब उसमें एक बात हुई, तो जब मैं दूसरी में बताती तो जो उसकी बात थी वो इससे कॉन्ट्राडिक्ट होती थी, मुख्तलिफ राय हो सकती है ना। तो बाद दफ़ा मैं बीच में आके फंस जाती थी कि स्टूडेंट्स कहेंगे अभी इन्होंने ये बताया, अब दूसरी बताइए, तो अब मैंने क्या इलाज निकाला, सब बंद, जो सब में से मुझे एक अच्छी लगती है, बस मैं उसको टू दी पॉइंट जाके बस उसको शेयर करके आ जाती हूँ कि भाई एक ही बता दूँ, लेकिन एक चीज़ से लोगों को कोई गलत फहमी तो ना हो। तो कच्चा पक्का इल्म, याद रखिए, लोगों में शक पैदा करता है। हमारे यहाँ बड़ों ने एक बात बनाई हुई है ना कि नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान। मैं पूरे दर्द के साथ मैं अपने आप को भी इसमें लेके कहती हूँ कि जब तक किसी मौजू पे आपको 100% यकीन ना हो, आप कभी किसी मजलिस में ना बोलें। आप तो भी जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं ना पढ़ने आए हैं, शादियों में आप जाएंगे, दावतों में जाएंगे, कभी भी कोई इशू ना शुरू करें, फंस जाएंगे। वहां आपसे बड़ा कोई बैठा होगा जो आप तो भी दूसरे पारे पे, तो वो छठे पे होगा, वो दो एक जैसे जंग कर कर के बाहर आ जाएंगे, और बाद में बदनाम कौन होंगे, या उस्ताद होंगे, या इदारे होंगे, या फिर आप हो जाएंगे। साफ कह दें आई डोंट नो, ये कहना कि आई डोंट नो, बहुत सारों को ये पता ही नहीं होता कि वी डोंट नो, वो कहते हैं हमें सब पता है, हमें सब आता है जी। तो इसलिए इल्म में पुख्तगी, सब्र अपने अंदर रखिए। बस दफा होता क्या, हम चर्चा बहुत करने लग जाते हैं, बस आप देखिए ना कि हमें नया नया इल्म मिल रहा है, तो नया इल्म जो होता है ना, ये नए कपड़े की तरह होता है, जब आते हैं ना फिर दिल करते दिखाएं लोगों को, सवारा भी याद है, तर्जमा भी याद है, रूट वर्ड भी आ गए, नंबर भांदे भाने से, अच्छा तुम्हारी नहीं देखती लेकिन तुम मेरे नंबर देख लो। मैं आप सबको एक छोटी सी नसीहत करूंगी, अगर आपको बहुत आगे जाना है इस काम में, अपनी अगर खूबी आपके अंदर कोई आ रही है ना, इल्मी या कुर्ब है या तहज्जुद शुरू हो गई या अल्लाह से बातें, इसको छुपाएं, इसको अपनी एनर्जी बनाएं। बिल्कुल आप इस वक्त जहन में लाइए एक उस गुब्बारे को कि जिसके अंदर हवा भरते हैं ना, आपको पता है कि जो ही हवा भरे तो वो ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर इसमें एक छोटा सा सुराख कर दें, रप्चर कर दें, तो वो नीचे आता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो इल्म, जो कुरान, वही हर वक्त ये चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, ये आपके अंदर आ रहे हैं ना, इसको अपने अंदर रखें। जितना आप अंदर रखेंगे ना, आप ऊपर उठेंगे इंशाल्लाह। बाहर लोगों को लगे आप आजिज हैं, कुछ भी नहीं, बस कोशिश है ये। आप झूठ भी नहीं बोलने, बस बड़ी बड़ी बातें ना करें, सीधी सी बात है, तो आप देखेंगे ये आपका ईमान बनेगा, ये फिर आपको ऊपर उभारेगा। और जब बहुत चर्चा शुरू हो जाता है अपनी बातों का, और जहां बैठे उधर बातें, एक तो नजर लगती है, अंदर गुण है कोई नहीं, लोग समझते हैं हम बहुत कुछ हैं, गलत फहमियाँ हो जाती हैं। और फिर उसके बाद जो होता है कि आपकी भी तो हवा निकल जाती है ना, सारी गैस तो आपने बाहर खोल दी, तो नतीजा क्या हुआ कि आप तो ढम पड़ जाएंगे। वल जिस्म, इल्म के साथ दूसरी खूबी जो दीन के काम के अंदर इंसान को फायदा देती है, वो जिस्म की है। मैं इस आयत को पढ़ा रही हूँ ना, बार बार मेरी नजर सूरह यूसुफ पे जा रही है, कि बिल्कुल 13वें पारे की पहली आयतों में भी यही बात है, हजरत यूसुफ की पर्सनैलिटी के नाते से, कि जब अल्लाह ने उनको चुना और अजीज मिस्र ने कहा कि आप मेरे स्पेशल वजीर बन जाए, वहां भी यही बात हुई थी, अमीन, बात का पक्का सच्चा। तो जिस्म से क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज। मरियल उस्ताद से कोई नहीं डरता, जिसकी आवाज ही ना निकले। और मैं कहती हूँ उस्ताद को लोग जहर समझे, यानी मीन के उसकी उसको एक बात भी अच्छी ना लगे, फिर भी उस्ताद को सख्ती करनी चाहिए। बस आप देखिए ना, कि जैसे हम कहीं से भी आते हैं, कहीं भी जाएं, आपको यूनिवर्सिटी में चले जाएं, हम क्या सोचते हैं, बस हमने जाना है ना, जो हमने सोचना ना वो ठीक है। मिसाल है, आप में से कोई यहाँ, मुझे नहीं पता लंदन में कोई यूनिवर्सिटी कौन सी है, लेकिन चले ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी का नाम ले लेते हैं, आप यहाँ से ह्यूस्टन जाते हैं, आप कहते हैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, बस वहाँ वो कुछ हो जो मैं चाहूँ, जब मेरा दिल चाहे मैं जाऊँ, जहाँ मैं बैठूँ, जहाँ उस्तादों को रोकूँ, बात करूँ, मैं जो कहूँ करूँ। आप मुझे बताएं कि आप कुछ सीख के आएंगे, आप जैसे थे वैसे के वैसे आ गए। ये जो इल्म का सफर होता है ना, वल्ला ही ये खुद को यूं मरोड़ मराड़ के ना एक बेलने में डालने का होता है, कि निकालो निचोड़ो, जब तक बेलने में नहीं बंदा डलता ना, रस नहीं निकलता। कहते हैं जिसको उस्तादों के हाथ लग जाते हैं ना, फिर वो निखर आता है। हमें कोई नहीं लगे, हम अपनी मर्जी के खुदरो पौधे हैं, कभी एक किताब से पढ़ लिया, कभी एक कैसेट से पढ़ लिया, कभी उससे पढ़ लिया, ना हमने अपनी जात पे इल्म को अंदर आके जज्ब करना चाहा, इल्ला माशाल्लाह, और ना जिस्मानी तौर पे हमारे अंदर खूबी आई। यकीन करें, आज इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में मैं अगर 10 नाम भी ले लूँ, तो हो सकता है आपको एक का भी ना बताओ, इल्म की इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं इस वक्त आलम इस्लाम में, मैं कहती हूँ उनका नाम लो तो मज़ा आ जाता है, लेकिन कोई काबिले जिक्र आपको नहीं दिखेगा। हाँ, इल्मी खजाना है उनका किताबों में, लेकिन 4 लोगों में आके वो बात नहीं कर सकते। लीडरशिप क्वालिटीज कम है, वो खुद अच्छे स्टूडेंट्स हैं लेकिन अच्छे टीचर नहीं बन सके आगे। तो ये दो चीज़ों को बढ़ाएं। और मैं कहती हूँ कि ये जो आपका कोर्स है ना, ये अल इल्म का कोर्स है, और जो अगला कोर्स हम कराते हैं, ट्रेनिंग जो सिर्फ अपने स्टाफ को देते हैं, को आप सबको भी देनी है इंशाल्लाह, जब आगे आपने जाना है, वो वल जिस्म का है, आपकी पर्सनैलिटी। आज मुसलमान का दीन क्यों इतना बिगड़ा हुआ है, मैं हैरान होती हूँ कि आपके हमारे इंग्लिश के टीचर हों तो उनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा खूबसूरत है एक दीनदार की पर्सनैलिटी से। मैं कपड़ों जूतों की तो बात नहीं कर रही, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस। आप देखिए, इसमें दौलत की बात कोई नहीं, नसब की बात कोई नहीं है। अच्छा, हम क्या चाहते हैं, सिर्फ इल्म मिले। मिसाल है कि आप सब है ना, क्या ख्याल है, यहाँ तफसीर का टाइम 4 घंटे ना कर दें 4:30 में से, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मुझे यकीन है कि आप सुबह आए ना, और आपको बीच में सिर्फ ब्रेक्स और नमाजों के अलावा पूरा वक्त तफसीर में कराऊँ ना, आप सब इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे जितने शायद आप खुश हैं, मुझे नहीं पता खुश हैं कि नहीं है, यकीन करें। मज़ा बहुत आता है इल्म में, लेकिन इसके इर्द गिर्द की जो चीज़ें होती है ना, तरबियत, वो अच्छी नहीं लगती। आप में से बहुत सारे सोच रहे हैं दरसो तदरीस की क्या ज़रूरत है, लो ये बातें कोई हमें पढ़ाने लिए, हम कोई कच्ची पक्की के बच्चे हैं, वो घरों में जाते हुए भी ये बातें करेंगे, वो हमें नहीं लिख के देते, आपस में बातें करते हैं, बड़ी बुरी बात है। याद रखिए, तरबियत के बगैर बिल्कुल ऐसे बात करके आगे चलती हूँ जैसे आप किसी जगह जाएं तो आपको बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आए, लेट्स सी, अगर आपको लग रहा है कि पिज़्ज़ा बेक हो रहा है, खुशबू भी बड़ी अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा देखे, और जब कोई आपके सामने सर्व करे तो वो डस्ट पैन में कर दे, कैसा लगेगा, नहीं अच्छा होगा ना। अब वो उसका मज़ा, उसका हुसन है, लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा लुकमा लेने को, क्योंकि सर्व अच्छा नहीं किया। तो जो इल्म आप ले रहे हैं ना, इसको सर्व कैसे करना है, इसके लिए आपको तरबियत की ज़रूरत है। जो चीज़ आपको मुश्किल लगे, जो रूल बुरा लगे, कहा करें बस मेरे लिए यही ज़रूरी है, इसके अंदर से मेरा रस निकलेगा। तो लिहाजा उन्होंने ये बात करके बता दिया कि ठीक है, और यहाँ से आपको फिर मिजाज भी समझ आ गया इस्लाम का, जो आगे जाके बात करते हैं। उन्होंने ये वजूहात बता दी और साथ ही लोगों की तवज्जो बांटी, वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, तुम ना बोलो इसमें, अल्लाह की अता है, अल्लाह अपनी बादशाह जिसको चाहे दे दे, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वसत वाला और बड़े इल्म वाला है। यहाँ भी जरा हाईलाइट करें, शमून नबी ने उनको क्या कहा कि अल्लाह अपनी बादशाहत जिसको चाहे दे दे। देखिए, अगर लोगों से पूछ के लोगों को कुछ मिलता ना, तो नबी सल्लम को तो कुछ ना मिलता, जिनके तो सर पे बाप भी नहीं था, गरीब थे। ठीक है, सरदार के पोते तो थे, लेकिन घर में फाकों की नौबत थी। तो अल्लाह ने जिसको देना होता है ना, वो किसी से पूछ के नहीं देता। मैं और आप किसी की कोई नेमत देखे ना, तो साथ ही दिल में कह दिया करें, अल्लाह ये तेरा फैसला है और तू इसको बेहतर तरीके से जानता है। और साथ ही देखिए कि अल्लाह ताला की जो दो सिफात आई हैं वो क्या है, वासिउन अलीम, ये दो हाईलाइट कर लें, वुस्सते कल्बी और इल्म, ये हैं वो दो चीज़ें जिसका इस सबक में आपको सबक मिल रहा है कि जब तक मुसलमानों में वुस्सते कल्बी नहीं होगी, ये नहीं कि नैरो माइंडेड, जस्ट लाइक आप कहना चाहिए कि बंद गलियां, दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, जरा किसी ने हाथ ऊपर से नीचे कर लिए, फतवों पे फतवे, ये वो नहीं वो नहीं। आज मुसलमान मुसलमान को देखकर नहीं खुश हो पा रहा, और दूसरी बात इल्म वाला, ये दो चीजें नहीं आएंगी तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद नहीं होगी। और यहाँ एक छोटी सी बात इशारतन करके आगे चलती हैं, और वो क्या है कि यहाँ बात हुई है बादशाहत की, मलिकन, बार बार मेरे भी मुंह से आप सुन रहे हैं, मलिक, बादशाह, बादशाह, तो क्या मतलब है ये बादशाहत, कोई अच्छा निज़ाम है? हम तो कहते हैं खिलाफत होनी चाहिए, क्योंकि खलीफा थे मुसलमानों के, है ना सवाल? तो यहाँ थोड़ा सा फर्क समझ लें, या जैसे आज के दौर में प्राइम मिनिस्टर है कहीं, प्रेसिडेंट है, यही टाइटल चल रहे हैं ना दुनिया में। मेरा ख्याल है कि एक दो मुल्कों के सिवा बादशाहत कहीं भी नहीं है, मुसलमान मुल्कों में भी किंगशिप है, सऊदी अरब में बादशाहत है, इसी तरह आप देखिए तो दुबई वगैरह की साइड पे भी मेरा ख्याल बादशाहत ही है, इसी तरह हमारे मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का ताल्लुक है। तो इस्लाम क्या कहता है इस पे, क्या बादशाहत जायज़ है? तो जवाब इसका बहुत सिंपल है, आप किसी को बादशाह सलामत कह लें, खलीफतुल मुस्लिमीन कह लें, आप किसी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह लें, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान कह लें, डजेंट मैटर, नामों से कुछ भी नहीं होता, असल चीज सिस्टम है। अगर बाअदल इंसाफ वाला बादशाह है ना, तो इंशाल्लाह कल वो अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे होगा। और नाम रख ले खलीफा, अभी मैंने आज वाक्य भी सुनाया, नाम नहीं मैंने बताया आपको, लेकिन वो मुसलमानों का उस वक्त का खलीफा ही था कि जो मंगोलों के हाथों कैद होके बगदाद की जेल में पड़ा हुआ है, और किसी ने उसके आगे सोने के रखे टुकड़े के, अब इसको खाओ, नामों से क्या होता है? आप आज के हुक्मरानों को बात कर लें, आप कहते हैं ये इसलिए बुरे हैं कि इनका नाम प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, तो चलिए जरा आप अपने सिर्फ तस्वुर के किसी कोने में इनके नाम के साथ खलीफतुल मुस्लिमीन लिख लें, सर शर्म से झुकता कि नहीं? नामों से क्या होता है, असल चीज किरदार है। इस्लाम ने सिस्टम बनाया, अल्लाह के नबी ने सबसे पहले फर्द की इसलाह की थी, एक बंदा समझ जाए, 13 साल तक किरदार तैयार हुए थे, फिर मदीना में आके इदारे खुद बन गए। आज हम कहीं भी दीन के काम की बात करें ना, तो हम पहले बिल्डिंगों की बात करते हैं, हमें जी काम के लिए बिल्डिंग चाहिए, मस्जिद बनानी है, बन गई, वहाँ चलाने वाले लोग ही नहीं है, उनकी मैनेजमेंट के अंदर कुछ मामला ही नहीं है। तो इस्लाम चाहता है कि लोग तैयार हो जाएं, फिर आप कच्ची मिट्टी पे भी बैठ के दीन का काम करेंगे, आप देखिएगा कुछ दिन के बाद अल्लाह उधर दीवारें भी लगवा देगा, फर्श भी पड़ जाएगा। तो कवानीन को कागजों पर लिखने की बजाय दिलों पर लिखना है, जब इस दौर का तज़किया हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बात बनेगी। उम्मते मुस्लिमा का जो एसेट है ना, वो फ़राद है। आप कोई भी किसी मशीन को बनाएं, और उसके साथ अगर उसको चलाने वाला कोई ना होगा, तो मशीन बेकार हो जाएगी। आज हम कहते हैं शरीयत नाफिज करो, इस्लामिक लॉज करो, जब हुई थी एक दौर में हमारे मुल्क में, सबसे ज़्यादा मजाक मुसलमानों ने उठाया था, हुक्मरानों ने कहा, एक दौर ऐसा हमारे मुल्क में गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह कि सलात कमेटियां बनी, हल्के हल्के जुमले मेरे भी कानों में हैं जो हम उस दौर में सुनते थे, कि एक ऐसे हुक्मरान आए थे हमारे मुल्क में कि जिन्होंने कहा कि नमाजों के वक्त में सब नमाज पढ़ेंगे, दुकानों पे बंद, लोग उस वक्त बाथरूमों में घुस जाते थे। उन्होंने सिगरेट नोशी पे पाबंदी लगाई, वो बाथरूमों में जाके सिगरेट पीते थे, आप क्या कर लेंगे? उन्होंने कहा कि हर साल के बाद हुकूमत जो है वो लोगों की ज़कात खुद ब खुद काटेगी, जो ही वो महीना आता था लोग अपने सारे पैसे निकाल लेते थे। क्या करेंगे आप, दिल बदलिए। असल बात अल इल्म और अल जिस्म की है। जितना ज्यादा लोग खुद अपने अमल के लिए तैयार हो जाएंगे उसके बाद बात होगी। इस्लाम ने इतना खूबसूरत मिजाज दिया था कि चोर खुद चोरी का इकरार करता था। किसी से जिना हो जाता था तो वो घर नहीं जाता था नबी के पास आके कि मुझे हद लगा दो कि मुझसे ये गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दो। तो आप देख सकते हैं कि लोगों को आज भी इस्लामी कानून से ज्यादा इस्लामी इल्म की जरूरत है। लिख लें ये बड़ा बड़ा जुमला, ये मैंने उस प्रोग्राम में कहा था जो आज रात को आने वाला है, कि आज हमें इस्लाम के इल्म काम करने की जरूरत है। हर बंदा अपने फर्द के लेवल पे ये नियत कर ले, 1 घंटा मैंने अपने 24 घंटों में इस पे लगाना ही लगाना है। हुकूमत को ऐसा काम कर ले कि हर जगह के वर्कर्स को 1 घंटा फ्री दे, जिसमें उनकी मस्जिद, उनके इदारे, उनके ऑफिस, उनके शोरूम में किसी दीनदार, किसी ऐसे इन शख्स का इंतजाम किया जाए, वो 1 घंटे में अपने सारे वर्कर्स को पढ़ाए और उनको विदाउट वर्क पे दी जाए। चलो हुकूमत अभी नहीं बनती, आप खुद कर सकते हैं। हर बंदा अपने इल्म की कोशिश करे, फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ऐसा वक्त आज भी आने वाला है कि आज मुसलमानों के अंदर वो दोबारा खैर आएगी। और अल्लाह ताला, याद रखिए कि ये जो हालात ऊपर नीचे करता है ना, इसमें बड़ी खैर होती है। जैसे जलसलों के बाद बाज़ दफ़ा जो जरखेज़ ज़मीन होती है ना, मिट्टी, वो ऊपर आ जाती है और ख़राब चली जाती है। तो ये जो आजकल हमें झटके पड़ रहे हैं ना, इसमें बहुत बड़ी खैर है। अगली आयत पे चलते हैं। और इस आयत के अंदर जो बात हमने समझ ली वो ये है कि अल्लाह ताला ने अपने फैसले अपने हाथ में रखे हुए हैं। अल्लाह शक्ल सूरत से किसी की मुतासर नहीं होता। फिरौन कितना खूबसूरत था, मूसा काले थे। कभी आपने सुना कि मूसा हबशी थे और फिरौन कितना गोरा चिट्टा था? कभी आपने उसकी खूबसूरती या उनकी काले रंग की वजह से कोई उनकी खूबी या खामी सुनी? तो रंग नस्ल को शक्लों को बिगाड़ने बनाने की फिक्र ना करें, असल ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके अंदर खैर डाल दें।